ओम शांति। प्यारा बाबा, हम सभी को एक ऐसी महान आत्मा बनाने जा रहे हैं ताकि हम विश्व के राज्य भाग को सुचारू रूप से चला सके आने वाले समय में। तो उसके लिए वर्तमान में हमें एक ऐसी अचल और अडोल स्थिति बनानी है ताकि आने वाले समय में अनेक विनाश की हलचल की परिस्थितियों में उनके प्रभाव से हम अपने आप को मुक्त रख सकें। और हलचल में भी हमारी स्थिति अचल और अडोल रहे। आने वाले समय से पहले ही बाबा हम सभी को एडवांस में इस बात का इशारा दे चुके हैं 30 तारीख की मुरली में कि भले चाहे कुछ भी हो लेकिन हम अपने कार्य को नहीं छोड़ें। जो जिम्मेवारी मिली है उसको करते हुए भी हलचल में अचल अडोल रहना है। तो इसका मतलब वो समय, आने वाला समय ऐसा होगा ताकि उन हलचल की परिस्थितियों में रहते हुए भी उनके प्रभाव से मुक्त, सभी से न्यारे और एक बाप के प्यारेपन की स्थिति हमारी बनी रहे। तो उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें ताकि हलचल में भी अचल अडोल स्थिति रहे। उसके लिए सबसे पहली बात है निश्चय बुद्धि बनकर चलना। निश्चय तो हम सभी को है लेकिन किस किस बात में विशेष निश्चय। सबसे पहला निश्चय कौन सा, किस में निश्चय सबसे पहले? अपने आप में निश्चय है कि मैं आत्मा ही नहीं, लेकिन कौन सी, इससे ही नशा नहीं चढ़ेगा है। मैं इस संसार की सबसे हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, से नशा चढ़ेगा ना। और दूसरा अविनाशी हूं। तो डर कब लगता है, भय कब लगता है, जब ये बुद्धि में जब तक नहीं आता है कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूं, महान आत्मा हूं। देह भान में जब तक हम हैं तब तक भय उत्पन्न होता है, लेकिन मैं अविनाशी आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, तो वहां भय वाली बात खत्म हो जाती है। और अपने आप के पार्ट में भी निश्चय कि जो भी हम पार्ट बजा रहे हैं वो अविनाशी है। कल्प कल्प हमने इतना श्रेष्ठ महान पार्ट बजाया है, हम ही देवता बने, फिर से बनना है। और दूसरा निश्चय, इस निश्चय से क्या होगा, अपने आप के निश्चय में आने से, निश्चय बुद्धि बनकर चलने से आत्मा के अंदर जो उसकी असली गुण विशेषताएं, महानताएं, क्वालिटीज हैं वो सहज आती चली जाएंगी। दूसरा निश्चय बाबा में, बाबा में क्या निश्चय, क्या निश्चय बाबा में, ये भी है कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आता है और बाप जो है जैसा है उसको उस रीति से पहचान कर और जानकर उसकी मत पर चलना। कौन है बाप, कैसा है, सर्व शक्तिवान है, सर्व खजानों का दाता है। और वो क्या दे रहा है हमें, विश्व की राजाई, विश्व का मालिक बना रहा है, तो उस पढ़ाई को कितनी वैल्यू देनी चाहिए है? तो इस प्रकार से भगवान जो है जैसा है उसको उस रीति से पहचान कर चलेंगे, जान कर चलेंगे, तो उससे वो प्राप्ति, उसकी गुण शक्तियां, उसका दिया हुआ श्रेष्ठ भाग के हम सहज अधिकारी बनते चले जाएंगे। और जहां निश्चय है वहां पर सहज विजय का भी अनुभव करेंगे। और तीसरा निश्चय कौन सा, ड्रामा कहो अथवा परिवार, उसके पहले परिवार में कि ये जो भी ब्राह्मण परिवार हमें मिला है, बाबा के बच्चे, ये वास्तव में ये जन्म जन्म के हमारे साथी मिले हैं। ऐसे ही नहीं मिले हैं, अनेक जन्मों में इन सभी के साथ हमने पाठ बजाया है। तो ये देव कुल की महान आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो इन सभी को हम उस नजर से देखकर चले, उनके साथ वैसा व्यवहार करें, तो क्या होगा? इससे एक दूसरे के साथ स्नेह सहयोग की भावना उत्पन्न होगी, संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। नहीं तो हम वर्तमान की रीति से जब देखकर चलते हैं, अरे ये तो ठीक नहीं है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये सदा ही मेरे सामने विघ्न डालते रहते हैं, बाकी सब ठीक है लेकिन ये ठीक नहीं है, ये मेरे सामने सदा रुकावट डालती रहती है। लेकिन इसका भी हमें ज्ञान दिया है बाबा ने, क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब हम सभी को यहीं चुकतू करना है, ताकि हम उस हिसाब किताब को यहीं चुकतू करके ऊंच पद के अधिकारी बन सके, प्राप्तियों में कमी ना आए। नहीं तो हिसाब किताब ज्यादा होगा तो प्राप्तियों में कमी हो जाएगी, सजा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। इसलिए हम ज्ञान और योग के बल से उस हिसाब किताब को चुकतू कर संबंधों को मधुर बनाते हुए चलेंगे तो सभी के साथ हमारा व्यवहार अच्छा होगा, तो पुरुषार्थ करना, स्थिति को महान बनाना सहज और सरल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन तीनों प्रकार के निश्चय में जब हम विजयी होंगे, सफल होकर रहेंगे हैं, तो वहां पर विजय हमारी सहज होती रहेगी, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, सभी प्रकार के प्रभाव से मुक्त रहेंगे और एक महान स्थिति बना सकेंगे। और ऐसी अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हम हर बात को पॉजिटिव रूप से लें, सकारात्मक रूप से लें, क्योंकि जो भी कुछ बाधाएं विघ्न परिस्थितियां आ रही हैं, वो हमें कुछ सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, हमारी स्थिति को मजबूत पावरफुल बनाने के लिए। क्योंकि यदि विघ्न ना आए तो बहुत सारी कमी कमजोरियां हमारे अंदर रह जाएंगी। जब कोई विघ्न परिस्थिति आती है तभी जागृति आती है, अभी क्या करें, कैसे करें, ये करें या वो करें, हैं? बुद्धि चलती है और किसी न किसी रीति से हम उसे विघ्न को पार कर लेते हैं, विजयी बन जाते हैं, तो सदा के लिए हमारे अंदर एक गुण विशेषता महानता आ जाती है। तो हम पॉजिटिव रूप से लें और हमें ये इनसे कुछ सीखना है, और इसके साथ साथ हल्के रहें। जितना परिस्थितियों में हम हल्के रहकर चलेंगे तो अनुभव ये कहता है कि परिस्थितियां भी हल्की हो जाएंगी। तो जो हम चाहते हैं वैसी स्थिति बनाना सहज और सरल हो जाएगा। आप सभी ने यज्ञ की हिस्ट्री में सुना है कि यज्ञ में शुरू से ही विघ्न पड़ते आए हैं। बाबा का कोई भी कार्य है या सेंटरों पर भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो पहले उसमें कुछ न कुछ रुकावटें आती हैं। क्यों? बाबा चाहे तो कुछ भी करा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो सर्वशक्तिवान है, सब कुछ करा सकता है, लेकिन क्यों आती है विघ्न परिस्थितियां? है? मजबूत करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, और उसके द्वारा परिस्थिति आने पर क्या होता है, और ये अनेक आत्माओं से मिलना होता है तो सेवा हो जाती है उनकी, है, अनेकों से संबंध संपर्क अच्छा हो जाता है, और ही बाबा का कार्य अच्छे से अच्छा हो जाता है, है? तो इस तरह से विघ्नों को देखकर हम घबराए नहीं। दादी जी जब थे तो कोई भी यज्ञ में ऐसी कोई बात विघ्न परिस्थिति आती थी तो हम देखते थे दादी जी तुरंत एक अतिथि सब योग बट्टी करो, सबको योग में बिठाती थी, योग बट्टी करते थे और उससे ही वो समस्या हल हो जाती थी। तो एक बाबा से लगन बढ़ाने का वो साधन बन जाता था वो विघन, एक हमारी स्थिति को और ही मजबूत बनाने का आधार बन जाता था। और स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए ड्रामा की बात, बाबा ने देखो अब मुरली में भी, अब व्यक्त बाप दादा ने भी ड्रामा को आगे कर दिया है, अपने से भी ड्रामा को आगे किया, क्योंकि जैसे बाबा ने कहा ना आगे आने की बात थी, तो ड्रामा जैसे निमित्त बनाएगा, तो ड्रामा में जैसा समय होगा वैसे बाबा आगे करेगा। तो ड्रामा वास्तव में बहुत ही सुंदर और एक्यूरेट बना हुआ है और कल्याणकारी बना हुआ है। यदि उसकी हम गहराई को समझकर चलें, तो जो कुछ हो रहा है वही निश्चित है, वही होना है, और उसी में हम सभी का कल्याण समाया हुआ है। यदि हम त्रिकालदर्शी बनकर चलते हैं, तो त्रिकालदर्शीपन की सीट पर स्थित होकर रहते हैं, चलते हैं, तो ड्रामा का हर सीन बातें आएंगी। कुछ केवल जब हम वर्तमान की रीति से देखते हैं कि ये तो ठीक नहीं हो रहा है, ये तो बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन कई सीन ऐसे आते हैं ड्रामा में, लेकिन यदि त्रिकालदर्शी बनकर उस नजर से हम देखेंगे, तो बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे हर अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण समाया हुआ है। तो वास्तव में उसका रिजल्ट कल्याण के रूप में ही सामने आता है। तो ड्रामा बहुत ही सुंदर और कल्याणकारी बना हुआ है, क्योंकि उसी अनुसार जो कुछ हो रहा है उसी अनुसार हम सभी के कर्मों का हिसाब किताब चुकतु होना है, और हिसाब किताब चुकतु होगा तभी हमारा पुरुषार्थ सहज होता चला जाएगा। तो कैसे कल्याणकारी है ड्रामा, इसके ऊपर एक कहानी शायद आप लोगों ने सुनी होगी है। राजा की एक राजा था, वो कहीं शिकार खेलने गया, तो तलवार निकाल के देख रहा था भाई ठीक ठाक है, ऐसे हाथ से चेक किया तो उसकी उंगली कट गई। उंगली कट गई तो मंत्री को आके बताया, तो मंत्री ने कहा जो हुआ कल्याणकारी हुआ। राजा को बड़ा गुस्सा आया, मेरी उंगली कट गई रही, कहता है कल्याणकारी हुआ है, इसको जेल में डाल दो। तो मंत्री को जेल में डाल दिया, मंत्री जेल में चला गया, तो फिर राजा अकेला ही शिकार खेलने गया। तो गया तो दोबारा जब गया तो कहीं पर ऐसा कोई मंदिर था देवी का, तो वो सोच के बैठे जो सबसे पहले आएगा उसी की बलि देवी को चढ़ाएंगे। तो ऐसे एक बहुत जंगल में पहुंच गया दूर, तो वहां कुछ लोग हथियार लेके खड़े थे, तो उधर से राजा पहुंच गया। वाह वाह, तो बहुत सुंदर शिकार आया है। तो बस राजा को पकड़ लिया और बस पकड़ के और बलि के लिए ले जाने लगे। तो बताया भाई बलि का ये नियम है कि यदि किसी का भी कोई अंग भंग है, जरा भी कटा हुआ है, तो वो देवी बलि स्वीकार नहीं करेगी। वो तो देखा तो राजा की उंगली कटी हुई है, नहीं बोली ये बलि के योग्य नहीं है, इसको छोड़ दो। तो तब राजा को ख्याल आया कि मंत्री ने जो कहा वो सही कहा है, अगर आज मेरी उंगली कटी नहीं होती तो मेरी बलि चढ़ जाती है। इस तो गया फिर मंत्री को वहां से जेल से निकालने का ऑर्डर दिया, थैंक्स दिया, और उसका पद भी ऊंचा कर दिया उसने। तो इस प्रकार से तो कहानियां बनी हुई है, लेकिन ड्रामा में हमको बाबा ने यह ज्ञान दिया है कि जो कुछ हो रहा है वही उसी में हम सभी का कल्याण समाया हुआ है। इसलिए ड्रामा को हमेशा कल्याणकारी समझ के चलेंगे, तो उसका वास्तव में रिजल्ट कल्याण के रूप में ही सामने आएगा, और उससे हमारी स्थिति को हम अचल अडोल बनाकर रख सकेंगे। नहीं तो हलचल होती है ना, कई सी इन बातें ऐसी देखकर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ड्रामा का पाठ पक्का हो तो वहां पर हलचल खत्म हो जाती है। जब वैसे ही होना है, निश्चित है, तो फिर हलचल करने की, संकल्प विकल्प चलाने की बात ही खत्म हो जाती है। और स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए साक्षीपन का अभ्यास करें। जो भी ड्रामा चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वास्तव में उसको हम साक्षी होकर देखें कि एक खेल चल रहा है, एक नाटक चल रहा है, और उस नाटक में हम सभी एक्टर के रूप में पार्ट बजा रहे हैं। आज जो दुनिया में भी स्थूल नाटक होते हैं, उनमें जो भी एक्टर पार्ट बजाते हैं, तो पार्ट बजाते उन सभी को यह स्मृति रहती है कि भाई हम वास्तव में तो फलाने व्यक्ति हैं, लेकिन अभी वर्तमान में हम राजा का या भिखारी का या जिसका भी पार्ट बजा रहे हैं। तो वो अपने पार्ट को बजाते भी उसके प्रभाव से अपने आप को मुक्त रखते हैं, क्योंकि उसको ज्ञान है, उनको समझ है या नॉलेज है। वो मान लो कहीं रोने का पार्ट बजाना है किसी को, तो वो ऐसे रोएंगे तो वो सबको रुला देंगे, लेकिन वो खुद नहीं रोएंगे, अंदर से केवल दिखाने के लिए रोएंगे वो है। तो ऐसे हम वर्तमान में अपना पार्ट बजाएं, लेकिन इस पार्ट में बजाते बजाते कई सीन ऐसे आते हैं, दृश्य ऐसे आते हैं, तो वो पार्ट बजाते बजाते हम उसको ही रियल जब समझ लेते हैं, तो वहां दुखी और परेशान हो जाते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं, उस सीन या बात या दृश्य के प्रभाव में आ जाते हैं। तो इसलिए हम एक्टर हैं और ये ड्रामा चल रहा है, ड्रामा में हम एक्टर के रूप में पार्ट बजा रहे हैं, जो भी जिसको पार्ट मिला है उस रीति से एक्ट करके, एक्टर समझ के पार्ट बजाए हैं, और एक टेम्परेली समय का हमें ये पार्ट मिला है। तो ऐसा समझकर पार्ट बजाएंगे तो कभी भी उस दृश्य या बात या परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आएंगे। साक्षीपन अर्थात सब कुछ करते देखते, कर्म करते, उसके प्रभाव से मुक्त रहना, यही है साक्षीपन की अवस्था। क्यों बाबा ने ये बात कही? क्योंकि वर्तमान में भी आगे आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी बातें, घटनाएं, दृश्य हम सभी के सामने आएंगे। अगर हमें पहले से ये साक्षीपन का अभ्यास नहीं होगा तो उनके प्रभाव में आ सकते हैं, वो हमारी स्थिति को हलचल में ला सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। अगर हमने पहले से ये अभ्यास किया होगा साक्षी होकर पार्ट बजाने का, तो कुछ भी देखते सुनते हुए उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, एक अचल अडोल स्थिति बनाकर रख सकेंगे, सभी प्रकार की हलचलों से हम परे रहेंगे। और अचल अडोल स्थिति के लिए हम बाबा को साथी बनाकर चले। सर्वशक्तिवान भगवान हमारे साथ है। हम बाबा को कई बार भूल जाते हैं, लेकिन बाबा सदैव ये कहता है कि मैं सदैव बच्चों के साथ रहता हूं, सदैव बच्चों के साथ रहता हूं मैं। इस पर मुझे एक अनुभव याद आया, आप लोगों ने सुना है या नहीं, एक बार दादी जानकी जी बतला रहे थे अपने क्लास में कि जब पहले पहले वहां ब्रज कोठी में आए बाबा, शुरू शुरू माउंट आबू में जब आए, तो दादी जी का कमरा बाबा के कमरे के साथ ही था, तो बार बार वहां कमरे के बाहर होके आना जाना होता था। तो दादी कई बार देरी से भी बाबा कमरे के आगे होके निकलती तो भी बाबा तपस्या में बैठे, और अमृत वेले कई बार जल्दी उठ के भी देखती है तो भी बाबा तपस्या में बैठे। तो दादी का संकल्प चला कि बाबा सोता कब है, सारे समय इतना समय तपस्या में क्या करता है, ऐसा दादी के मन में थोड़ा संकल्प चला। तो बाबा के पास तो पहुंच जाती है टचिंग, तो बाबा ने जब जा रही थी दादी तो बुलाया, बच्चे आओ बच्चे आओ। तो बाबा ने कहा कि देखो आपका संकल्प चला ना कि बाबा तपस्या में क्या करता है, तो देखो भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बाप के नाम की माला जपी जपी है ना सबने, भले जानते नहीं थे लेकिन किसी न किसी रूप में भी, जिस रूप में भगवान को मानते थे उसका नाम सुमरण करते थे या कोई माला जपता था, भक्ति में कुछ भी करते थे, भजन करते थे, तो माला जपी है ना सभी ने। तो भक्ति में तुम बच्चों ने भगवान के बाप के नाम की माला जपी है, लेकिन अभी बाप तुम बच्चों के नाम की माला जप रहा है। तो सोचो आप कितना प्यार होगा बाबा से हमारा। वहां दादी की बात नहीं, लेकिन हम कोई भी बात बाबा की हम सब बच्चों के लिए होती है। तो आप सोचो भगवान जिनके नाम की माला जपे तो कितनी महान आत्माएं होंगे, कितने नशे की बात है, कितने महान पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं होंगे। दुनिया में तो भगवान को लोग याद करते हैं, उसके नाम की माला जपते हैं, लेकिन यहां स्वयं भगवान हमारे नाम की माला जपता है, रोजाना याद करता है। तभी तो 3-4 पेज का पत्र हमारे लिए मुरली का भेजता है। जो बाप रोजाना बच्चों को पत्र लिखता हो, लेटर लिखता हो, तो कितने महान भाग्यशाली हो। मुरली बाबा का लेटर ही है ना, पत्र ही है ना। तो इस प्रकार से हम वो सर्वशक्तिवान स्वयं हमें याद करता है, वो सदैव हमारे साथ है। तो कहीं भी कोई बात परिस्थिति आए उसे उसका आह्वान करो, उसे यूज करो, तो वहां पर सहज विजय का अनुभव करेंगे, उस परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहेंगे, हलचल से परे रहेंगे। आप लोगों ने सुना होगा जब अमेरिका में वो दो टावर गिराए गए हैं, आतंकवादियों ने गिराई, टक्कर मारी प्लेन से, तो उस समय एक टावर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर 60वीं मंजिल पर एक अपना भाई सर्विस करता था, बीके। तो जब उसमें प्लेन ने टक्कर मारी तो पूरी बिल्डिंग हिलने लगी, बिजली कट ऑफ हो गई, सब अंधेरा, सब लोग चिल्लाने भागने दौड़ने लगे। तो वो भाई ने कहा कि भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान हमारे साथ है, तुम आओ सभी मेरे साथ चलो। अब 60वीं मंजिल से नीचे सीढ़ी उतर कर आना है तो कितना भी जल्दी भी करेंगे तो भी 15-20 मिनट तो लगेंगे ही, 15 मिनट तो कम से कम लगा ही लो। और वो बस भगवान सर्वशक्तिवान हमारे साथ है इस निश्चय के आधार से वो जो भी 8-10-15 लोग थे उनके साथ वो सीढ़ी नीचे उतरता आ रहा है और बिल्डिंग हिल रही है, लेकिन सर्वशक्तिवान हमारे साथ है इसलिए कोई संकल्प में भी हलचल जरा नहीं उनको, उस भाई को। उसके कारण और लोगों को भी थोड़ा हिम्मत आ गई, चलो भाई चलते हैं इनके साथ। वो आते रहे, उतरते रहे, उतरते रहे, बिल्डिंग हिलती रही, और जैसे ही वो बिल्डिंग से नीचे उतर कर बाहर आए उसके बाद बिल्डिंग गिर गई। तो आप सोचो जहां सर्वशक्तिवान भगवान साथ है तो क्या नहीं कर सकता हम बच्चों के लिए, सब कुछ करने को तैयार है। इसलिए हम सदा अपने जीवन में उसको साथ ही बनाकर चलेंगे तो वहां असंभव कार्य भी संभव होते चले जाएंगे। इसलिए कुछ भी बात परिस्थिति आए तो कभी भी हलचल में ना आए, उसका आह्वान कर लें, उसको दिल से मन से याद कर उसको अपने मन की बात उसको बता दें, तो वहां पर तुरंत उसकी शक्तियों की एक इमर्ज रूप में शक्तियां अनुभव होंगी और उस हलचल की परिस्थितियों पर हम सहज विजय प्राप्त कर सकेंगे, उनके प्रभाव से अपने आप को मुक्त रख सकेंगे। और भय का कारण, हलचल का कारण क्या बनता है, इसी से संबंधित बात, अकेलापन। अकेलापन, जहां व्यक्ति अकेला अपने आप को महसूस करता है तो वहां भी भय लगता है ना, डर लगता है। लेकिन बाबा ने कहा है कि बच्चे मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, हम भले भूल जाते हैं लेकिन बाबा हमें कभी नहीं भूलता, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। तो ये स्मृति है सदा इमर्ज रूप पर रखो, कम्माइंड है बाबा मेरे साथ ही नहीं बल्कि कम्माइंड है, है? तो जहां कम्माइंड होगा तो वहां डर लगेगा, कोई किसी के साथ होता तो फिर थोड़ी डर लगता है किसको, अकेले समझते हैं तो डर लगता है, इसलिए कभी अकेला समझो ही नहीं। और स्थिति को अचल और अडोल बनाने के लिए हम सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर स्थित होकर चले। जो भी बाबा ने स्वमान दिए हैं, एक एक स्वमान के अंदर वो महानताएं, गुण, विशेषताएं, शक्तियां समाई हुई है, जिनकी स्मृति आते ही वो नशा चढ़ेगा, शक्तियों की अनुभूति होती है। सबसे बड़ा स्वमान कौन सा है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, जो सर्वशक्तियां की अधिकारी हूं मैं, आत्मा है वो, मेरे हैं, उन पर मेरा अधिकार है, कंट्रोल है। तो श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर स्थित होकर चलेंगे तो वहां बाबा ने कहा, हर गुण और हर शक्ति का नशा सुतई मर्ज रूप में रहेगा। और सीट वो ऐसी है, उस पर स्थित होकर चलने से हर शक्ति आपका आर्डर मानेगी। और बाबा के ही महावाक्य हैं कि यदि तुम सदा ही अपनी श्रेष्ठ स्व स्थिति में रहो तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। कैसी भी रास की हलचल की परिस्थिति हो, लेकिन यदि हम अपनी श्रेष्ठ स्व स्थिति में हैं तो परिस्थितियां बदल जाती है। उस बजाय नुकसान करने के या कुछ भय उत्पन्न करने के, वो हमारे सहयोगी बन जाएंगे। आप में से शायद सुना होगा यार लोगों ने, नहीं, ये जब भुज में भूकंप आया था, गुजरात में आया था ना भूकंप है, तो उस समय पूरा भुज शहर, जैसे कि एक भी मकान ऐसा नहीं बचा जो कि नहीं टूटा हो, सब मलबे का ढेर बन गया। लेकिन उसमें जो बाबा का सेंटर था वो ऐसे कि ऐसे खड़ा है, झंडा लहरा रहा है। क्यों, क्या इसके पीछे रीजन है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि जहां के, जिस स्थान के वाइब्रेशंस पॉजिटिव है, पावरफुल है, शक्तिशाली है, वहां पर नेगेटिव वाइब्रेशंस प्रभाव नहीं डाल सकते। और भी कई जगह, कहीं बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, कोई मंदिर में होगा, मस्जिद या गुरुद्वारे, धार्मिक स्थान जो भी होंगे वो बचे रह जाएंगे, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां के वाइब्रेशन पावरफुल है, शक्तिशाली है, इसलिए नेगेटिव वाइब्रेशन उन पर प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। तो जहां पर हम अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहते हैं, श्रेष्ठ स्थिति में रहकर चलते हैं, बाबा को साथ ही बनाकर चलेंगे, तो कैसी भी परिस्थितियां हो वो हमारे पर प्रभाव नहीं डाल सकेंगी। और जहां सर्वशक्तिवान के स्वमान में वास्तव में इतनी बड़ी शक्ति है, कैसे भी बड़ी से बड़ी समस्या को भी सहज हल किया जा सकता है उसके द्वारा। तो एक ऐसा ही अनुभव, एक भाई थे, उन्होंने किसी व्यक्ति से जमीन के प्लाट के लिए सौदा किया था, तो 4 लाख रुपए में सौदा तय हो गया। उनको डेट फिक्स कर दी गई, फलानी डेट को आना, आप पैसे दे जाना और रजिस्ट्री करा देंगे। वो पैसे लेकर गया, वो भाई बीके था, बाबा का बच्चा, वो गया, पैसे लेकर गया, बातचीत होती रही और ठीक है भाई आप पैसे दे दो और रजिस्ट्री करा दो। तो उसने पैसे दे दिए और पैसे लेकर वो व्यक्ति घूम गया कि आपको हम ये प्लाट नहीं, ये प्लाट देंगे। नहीं बोल, मेरे को तो वही प्लाट चाहिए जो मुझे पसंद था। नहीं बोल, वो नहीं मिलेगा, आपको ये प्लाट देंगे। तो बोल, नहीं ये तो मेरे को नहीं चाहिए, तो मेरे पैसे वापस कर दो। बोल, ठीक है, तो आपके पैसे वापस कर देंगे, कल ले जाना। कल आया, बोल 5 दिन के बाद ले जाना। 5 दिन बाद गया, 15 दिन बाद लेना। 15 दिन बाद गया, महीने के बाद लेना। ऐसे करते करते उसको 2 साल निकाल दिए, पैसे वापस नहीं कर रहा, ना भी नहीं कर रहा और हाँ भी नहीं, दे भी नहीं रहा। तो बड़ा टेंशन हो गया उसको, क्योंकि छोटी मोटी थोड़ा बहुत पैसा हो तो चलो चल जाते, 4 लाख रुपए थे। तो उसने मेरे पास फोन किया, भाई जी ऐसे ऐसे बात है, मैं क्या करूं, बड़ा टेंशन हो गया है। मैंने उसको यही स्वमान बताया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस स्वमान में स्थित होकर आप रोजाना 1 घंटा पावरफुल योग करो, और जिस समय 21 दिन तक पावरफुल योग करो रोजाना 1 घंटा, और जिस समय योग करें उस समय ये संकल्प करना कि इस मेरे योग की पावर उस आत्मा को जाए और उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ऐसा संकल्प करना उस समय जिस समय योग करें आप, और बताना फिर इसका रिजल्ट क्या रहता है। उस भाई ने इस तरह से योग किया और जिस समय योग करता था तो ये संकल्प करता था कि ये मेरे योग की पावर उस आत्मा को जाए और उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे। करते करते उसको 10 दिन हुए योग करते करते, और 10 दिन के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसके पास आया और 4 लाख रुपए घर बैठे देकर चला गया। इतनी बड़ी शक्ति है इस मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में, क्योंकि वहां पर बाबा की सर्वशक्तियां हमारा साथी बनकर साथ निभाती है, जिनके द्वारा कैसी भी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है और एक बड़ी से बड़ी समस्या विघ्न परिस्थिति को भी हल किया जा सकता है। इसलिए सदा ही हम अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहें, उस नशे में स्थित होकर चलें, तो कोई भी विघ्न परिस्थिति परिस्थिति नहीं बल्कि वो हमारे लिए एक आगे बढ़ने का माध्यम बन जाएगी, स्थिति को अचल अडोल बनाने का एक साधन बन जाएगा। और ऐसी स्थिति बनाने के लिए हम विशेषकर ये 3 गुणों को अपने जीवन की धारणा में लाएं, संतुष्टता, निर्भयता और सहनशीलता। संतुष्टता, बाबा ने भी संतुष्ट मणि बनकर बनाने की बात कही है। संतुष्ट मणि जो आत्मा होगी, संतुष्टता कैसे आएगी जीवन में? जितना जितना हम ज्ञान और योग के खजाने से फुल होंगे, भरपूर होंगे, तो वहां पर संतुष्टता आती जाती है जीवन में। जो भी बाबा ने श्रेष्ठ भाग्य प्राप्तियां कराई है उन सभी को इमर्ज रूप में रख के चले। कभी भी व्यक्ति स्थूल सुख सुविधाएं साधनों से संतुष्ट नहीं होता जब तक उसके अंदर ज्ञान और योग का बल नहीं आएगा। आज दुनिया में बहुत लोगों के पास अथाह धन दौलत सुख सुविधाएं साधन है, फिर भी क्या संकल्प रहता है? और हो जाए है? और प्राप्ति हो, और इतना धनवान बन जाऊं, लखपति करोड़पति है, अरबपति बन जाऊं, फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं होती व्यक्तियों की। लेकिन बाबा ने हमको ऐसी नॉलेज दिया है, इतने जो बाबा ने खजाने दिए, इतना श्रेष्ठ भाग्य दिया है, उसको स्मृति में इमर्ज रूप में रख के चलेंगे तो वहां संतुष्टता हमारे जीवन में आती चली जाएगी। और जहां सर्व खजानों से फुल है आत्मा, संतुष्ट है, तो ऐसी आत्मा को कोई परिस्थिति हिला नहीं सकेगी। और निर्भयता, जो मैंने पहले बताया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो वहां भय वाली बात तो ऐसी खत्म हो जाती है। अगर कहीं भी भय का संकल्प आता भी है तो इसका मतलब हम अपने श्रेष्ठ स्वमान में नहीं है, देह भान में है, तो वहां पर आत्मा अभिमानी बनने की है, शरीरी बनने की है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर चलने की आवश्यकता है, तो भय जीवन से स्वतः खत्म होता जाएगा और भगवान सर्वशक्तिवान हमारे साथ है तो भी खत्म होता चला जाता है। निर्भयता का गुण एक विनाश के हलचल की परिस्थितियों में उनके प्रभाव से मुक्त होने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और तीसरा है सहनशीलता। सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं है, बाबा ने बताया सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है। जो व्यक्ति सहन करता है उसके अंदर ही गुण विशेषताएं महानता आती है। सहनशीलता एक आगे बढ़ाने के लिए साधन बन जाता है। सहनशीलता सहनशाहों का सहनशाह बनाता है। अनेक गुण विशेषताएं शक्तियां हमारे अंदर सहन करने से आती है। सहनशील, सहन करना भगवान की श्रीमत है, उसकी आज्ञा है ना, तो भगवान की श्रीमत का हम पालन कर रहे हैं तो उसमें खुशी शक्ति मिलेगी। तो जो व्यक्ति सहनशील जितना बनकर चलता है तो ऐसी आत्मा हर परिस्थिति को है जी पार कर लेगी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं कोई परिस्थिति। और स्थिति को अचल और अडोल बनाने के लिए हम अपना सब कुछ बाबा का समझ कर चले। देखो हलचल कहां व्यक्ति के अंदर आती है, जहां पर मेरापन है, मेरा बच्चा, मेरा मकान, दुकान या बिजनेस, जो भी कुछ मेरी चीज है, कुछ भी उसको हुआ तो क्या होगा, है हलचल पैदा होगी ना। है माताओं को अनुभव है, बच्चे जरा भी मान लो बीमार हो गए तो उसे देखकर माता जी बीमार हो जाती हैं कई, तो है होता है ना, क्यों, वो मेरा बच्चा है इसलिए उसका प्रभाव आया है। और यदि बात वही है, बच्चा बीमार होता है, यदि आप बाबा का समझकर चलेंगे तो क्या होगा, और भी अच्छी उसकी सेवा कर सकेंगे और उसके प्रभाव से आप मुक्त रहेंगे, और बाबा का समझकर चलने से बाबा उसको ठीक करेगा अपने आप और हल्के रहेंगे। तो कितना एक सहज ज्ञान योग का जहां प्रयोग करके चलते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या कैसे हल्की हो जाती है। तो ऐसे कोई भी बात समस्या परिस्थिति आए तो वहां यही हम कहते हम सभी हैं, लेकिन परिस्थितियों में उस बात को यूज कर चले, उसका स्वरूप बन के चले, उसको प्रैक्टिकल जीवन की धारणा में लाएं, तो वहां पर हर बात के प्रभाव से मुक्त, हलचल से परे, रचल अडोल स्थिति बना सकेंगे। और इसके साथ साथ परिस्थितियों में विजयी बनने के लिए किस बात की आवश्यकता पड़ती है, शक्तियों की। शक्ति चाहिए ना, कोई विघन परिस्थिति को पार करने के लिए शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। और शक्तियां कैसे आती हैं, शक्तियों को जीवन में लाने के लिए, धारण करने के लिए क्या करना होगा, हाँ ठीक है, योग बल से भी शक्तियां आती हैं, और किस किस बात से शक्ति आती है, श्रीमत पर चलने से, पवित्रता के बल से भी शक्ति आती है। जितना जितना हम पवित्रता में संपूर्ण बनते जाएंगे तो भी बाबा की शक्तियां हमारे अंदर आती जाएंगी। और शक्तियों का सबसे बड़ा स्रोत है बिंदु बन जाना, बिंदु बन जाना, पॉइंट ऑफ लाइट बन जाए, आत्माभिमानी बन जाए, बाबा के स्वरूप पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं, बिंदु बनकर बिंदु पर एकाग्र कर लगा एकाग्र करते मन बुद्धि को, तो वहां आत्मा सर्व शक्तियों से फुल होती चली जाएगी। और शक्तियां कैसे आती हैं, समर्थ संकल्पों से। मैंने अभी बताया ना पीछे, समर्थ अर्थात पॉजिटिव पावरफुल संकल्प, जो भी बाबा ने स्वमान दिए हैं उनका स्वरूप बनकर चलने से शक्तियां आती है। मैं लाइट हाउस, माइट हाउस, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, अवतरित हुआ फरिश्ता हूं, विजयी रतन हूं, है तो वो स्मृति आते ही जैसे कि वो पावर आने लग जाती है आत्मा के अंदर। तो समर्थ विचारों का सदैव स्वरूप बनकर चले। और शक्तियां किससे आती हैं, दुआओं से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दुआएं जमा करने के लिए हम अपने बोल व्यवहार कर्मों से दूसरों को सुख दें, सहयोगी बन के चले। तो जितना जितना सनेही सहयोगी बन के चलेंगे, सुख देंगे, उतना उतना दुआओं का खाता जमा होता जाएगा। दादी जी सदैव कहती थी, कुछ भी होता था, हम कई बार आंगन में बैठती थी, दादी से पूछते थे कुछ तबीयत थोड़ा बहुत कभी ऐसे होती थी ऊपर नीचे, तो दादी कहती नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं है, बस मेरे को तो आप सबकी बहुत दुआएं हैं, दादी जी बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है दुआओं का। जब विघ्न परिस्थितियां आती हैं ना, उस समय अगर आपके खाते में दुआओं का खाता बहुत जमा है तो वो विघ्न, बड़े से बड़ा विघ्न सूली से कांटा बन जाएगा। सहज उसे आप पार कर सकेंगे। तो इसलिए दुआओं का खाता भरपूर करते चलो तो क्या होगा, शक्तियां जमा होती जाएंगी और जहां हम सर्व शक्तियों से संपन्न बनते जाएंगे, शक्तिशाली आत्मा बनकर चलेंगे, तो आने वाले समय में अनेक विघ्न परिस्थितियों में रहते हुए भी उनके प्रभाव से मुक्त और एक अचल अडोल स्थिति बनाकर बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो वर्तमान समय बाबा हम सभी को एक ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में देखना चाहते हैं। ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।